नाम का जो ग्रंथ है उसके पेज नंबर 9 से हम पढ़ना चालू करेंगे। अभी तक तो हमने 9 पेज के आधे तक तो हम आ गए हैं, तो यहाँ क्या बताया वो एक जो पैराग्राफ है वो पढ़ के आगे हम बढ़ते हैं कि आहा हा। ऊपर से तीसरा पैराग्राफ है, दूसरा, केवल ज्ञान केवल दर्शन पर्याय नी अस्ति नी प्रतीति थवी, अर्थात केवल ज्ञान केवल दर्शन अनंत आनंद अनंत वीर आदि पूर्ण पर्यायनु अस्तिपणु छे, आवी महान अलौकिक सत्ता जगत मा छे, एम प्रतीति मा आवू ए असाधारण बात छे। इसका अर्थ क्या हुआ कि सर्वज्ञ की अस्ति है, ऐसी किसी जीव की श्रद्धा होना यह भी अलौकिक बात है। क्या कहा देखो, कह रहे हैं केवल ज्ञान केवल दर्शन पर्याय एना अस्तिनी प्रतीति सभी, तो ये जो केवल ज्ञान रूप जो पर्याय है वो कहां से निकले, ज्ञान उनसे निकलेगी और ज्ञान उनका धारी कौन है, तो कहते हैं जीव है। तो ऐसा जीव के जिसके केवल ज्ञान की पर्याय व्यक्त रूप से है तो उसे ही तो सर्वज्ञ कहते हैं। ख्याल में आया, तो यहां ये कह रहे हैं कि देखो हमारे यहां तो ऐसे कई महाभाग भी है कि जो कहते हैं कि सर्वज्ञ छे कोने जोयू, ऐसा कहने वाले, तो कहते हैं कि ऐसा जीव जो माने क्या कि केवल ज्ञान और केवल दर्शन रूपी पर्याय की भी अस्थि है, तो पर्याय की अस्थि है तो पर्याय कभी द्रव्य बिना होगी क्या, क्योंकि हमने तो देखा है कि जहां जहां द्रव्य है वहां वहां गुण है, और हम उल्टा देखेंगे और जहां जहां गुण है वहां वहां पर्याय है, और जहां जहां उल्टा देखेंगे तो पर्याय जो पहले नहीं थी वो उत्पन्न हुई, तो उसकी उत्पन्न होना यह जो अस्थि है, तो यह जो विशेष कार्य हुआ तो वह विशेष कार्य हुआ कहां से, तो सामान्य में से विशेष की उत्पत्ति होती है। क्या कहा, नहीं समझ, मैं समझ गया इसलिए तो रुक गया। जो विशेष होता है, विशेष यानी जो पहले नहीं था, ज्ञान गुण है 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 कब से है, तो अनादि से ज्ञान गुण की सत्ता है, तो अभी उसकी व्यक्तता किस रूप से, तुम्हारे हमारे में मति शुद्ध ज्ञान की है, ख्याल में आया। तो जो ज्ञान गुण है तो मति ज्ञान की अवस्था यह उसका विशेष है। अभी श्रद्धा गुण है तो श्रद्धा गुण की अभी परिणति, श्रद्धा गुण की परिणति चल रही, कौन सी कि मिथ्या दर्शन मिथ्या दर्शन मिथ्या दर्शन, लेकिन नई 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 पर्याय हो रही है, नया नया विशेष उसकी अवस्था हो रही है, ऐसा टाइम आएगा कि वो सम्यक दर्शन रूप परिणमेगा। तो सम्यक दर्शन रूप यह विशेष कार्य हुआ तो विशेषपना जो है वो निकला कहां से, सामान्य में से, इसलिए हमने कौन सा कंक्लूजन निकाला कि विशेष की उत्पत्ति सामान्य में से होती है। मेरा एक आपसे प्रश्न है कि कुदेव कुगुरु कुशास्त्र से सम्यक दर्शन होगा क्या? नहीं होगा पक्का ना? तो सुदेव सुगुरु सुशास्त्र से तो होगा कि नहीं? बोलो। क्यों चुप? बोलो भूपत भाई, आप बताएंगे।
हाँ,
देव यानी व्यवहार सम्यक दर्शन उनसे होगा। भाई हमने क्या पूछा? हमने क्या पूछा कि कुदेव कुगुरु कुशास्त्र से सम्यक दर्शन होगा क्या? तो आपने निश्चय से बताया कि व्यवहार से बताया, तो आपने नहीं बोला ना। तो कौन सा था वो? व्यवहार का ही कथन था ना, हा? क्योंकि दो द्रव्य का एक कार्य नहीं होता है, तो जो होता है ऐसा कहने में आएगा तो व्यवहार है। अब आगे चलो, कुदेव कुगुरु कुशास्त्र से जो सम्यक दर्शन नहीं होता, इसमें तो हम बिल्कुल साफ 100% एक दफे एक सब एक मत से बोलते नहीं नहीं। तो मेरा प्रश्न ये है कि सच्चे देव गुरु शास्त्र से सम्यक दर्शन होगा क्या नहीं? जय बेन
स्वरूप
समझी ने पोता
नाम अलीम था।
हाँ बोलो।
उससे नहीं होगा मगर खुद से होगा।
कैसा?
आत्मा का जो अनुभव होगा जैविक।
हाँ बोल बतावे। बोलो।
सम्यक दर्शन आत्मा में से ही होगा क्योंकि जीव की योग्यता उपादान।
ये हम 11 अंग और 9 गुरु पढ़ना नहीं चाहते। अब भी मैंने जो बताया उसके ऊपर। हाँ बोलो।
सामान्य में तो
सामान्य कौन है?
द्रव्य जीव तत्व
श्रद्धा गुण।
श्रद्धा गुण
गुण की पर्याय हो रही ना? नहीं 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 नहीं। देखो देखो हम तो बहुत पढ़ चुके हैं लेकिन थोड़ा सा ऐसा उल्टा फांसा डाल दिया, लड़खड़ा जाते हैं। क्यों? कि हमने अभी देखा कि सामान्य में से ही विशेष की उत्पत्ति होती है। तो सामान्य कौन है यार? जीव का है। जीव में तो अनंत कौन है? तो सम्यक श्रद्धान जो है, सम्यक दर्शन जो है, वो निकले कहां से? अरे भाई जीव से। अरे ये बात नहीं चलेगी। श्रद्धा गुण का वह परिणमन है, पूरे आत्मा का थोड़ी परिणमन है। आत्मा में तो अनंत कौन है?
श्रद्धा गुण बोलेंगे तो फिर भेद किया।
बिल्कुल, क्योंकि उत्पत्ति कहाँ हुई है? श्रद्धा गुण की उत्पत्ति सम्यक दर्शन है ना? क्या ज्ञान गुण से सम्यक दर्शन हुआ? क्या चारित्र गुण से?
अखंड द्रव्य होगा
सामान्य। देखो तो अगर हम द्रव्य को गुण को हम विशेष कहेंगे तो द्रव्य सामान्य होता है। जैसे हमने कहा कि जगत में मेटल्स धातु बहुत है, तो धातु यह सामान्य हुआ, सोना वो विशेष हो। अब सोने में से बंगड़ी बनी तो सोने की वो विशेष हो। इस तरह जब हम देखते हैं कि जब हम द्रव्य को सामान्य कहेंगे तो गुण उसके विशेष होंगे। इसलिए तो समय सार में लिखा है ना मैं ज्ञान हूं ना मैं दर्शन हूं। ख्याल में आया? तो ऐसा क्यों कह रहे? क्योंकि ऐसा भेद रूप मैं नहीं हूं, मैं अखंड एक सामान्य हूं। बात ख्याल में आई? लेकिन जब हम उसको विशेष कह रहे, अब यहां क्या है? विशेष कौन सा है? पर्याय विशेष है। तो पर्याय विशेष है तो पर्याय निकली कहां से? तो उस गुण से निकलेगी कि जिसकी वो पर्याय है। तो जब हम कहते हैं कि सम्यक दर्शन अगर होना हो तो हमें किसके तरफ देखना पड़ेगा? अरे कुदेव कुगुर बिल्कुल नहीं, उसके तरफ तो देखना ही नहीं। तो फिर किसको देंगे? सच्चे देव गुरु शास्त्र के पास जाओ, वो भी तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं देंगे। क्योंकि साक्षात तीर्थंकरों के समोशरण में भी कई जीव तो चाहे सम्यक भी हो जाते। तो अगर वही देने वाले होते उनके कारण ही सम्यक दर्शन प्राप्त चाहे सम्यक दर्शन होता तो इतने जीव थे, मनुष्य ही क्यों होते चाहे सम्यक दृष्टि? देव भी तो आते वहां पर। ख्याल में आया? अभी तो बात तो ये है कि सम्यक दर्शन रूपी जो कार्य होगा वो तो श्रद्धा गुण से निकलेगा, और जब हम अपने श्रद्धा के तरफ देखेंगे तो श्रद्धा के तरफ भी देखेंगे तब भी सम्यक दर्शन नहीं होगा, क्योंकि वो भेद है। तो ये सम्यक श्रद्धा जैसे जो अनंत गुण का एक अखंड पिंड ऐसा जो मैं हूँ, ऐसा जो सामान्य मैं हूँ, उस पर जब यह जीव की उपयोग, जीव के लक्ष्य कहो, उपयोग कहो, या जीव का कंसंट्रेशन कहो होगा, तब उसको सम्यक दर्शन होगा। तो उसमें तो सारे जो गुण विपरीत परिणाम हो रहे थे वो सारे के सारे सम्यक रूप से परिणमेंगे, लेकिन हम तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीन की ही बात देखते हैं शास्त्र में, अन्य किसकी बात नहीं देखते। ये तीन ही गुण उनकी जो पर्याय है वो रिप्रेजेंट करते पूरे आत्मा के। देखो बहन, आपने हमने पढ़ा था, याद होगा तो आपको, ये विश्व द्रव्य में अनंत गुण है, अनंत गुण में अनंत गुण तो सम्यक रूप से परिणत हो रहे और अनेक गुण तो विभाव रूप से परिणत। तो विभाव जितने अनंत है वो तो सारे के सारे एक साथ सम्यक रूप से परिणत। तो हमने कौन सा रूल देखा कि विशेष की उत्पत्ति सामान्य में से होती है, तो ऊपर के तरफ देखने की, झांकने की, उसके तरफ क्या हीन दीन बनने की कोई आवश्यकता नहीं। तो यहां यह कहते हैं कि जब केवल ज्ञान और केवल दर्शन रूपी जो पर्याय की अस्थि जिसने स्वीकृत की है, तो उसको तो वह जो सामान्य रूप से जो गुण है और वो गुणों का सामान्य जो द्रव्य है, ऐसे सर्वज्ञ के ऊपर दृष्टि जाएगी और उसने सर्वज्ञ को माना है ऐसा कहेंगे। जब तक तो उसको सब पर्याय की ही प्रतीति नहीं है, पर्याय का ही विश्वास नहीं है, तो फिर अन्य बातें कहां है। देखो हम कहते नहीं नहीं साहब, हम तो सर्वज्ञ को मानते हैं, हम तो जिनेन्द्र भगवान के अलावा अन्य किसी को नहीं मानते। फिर जब क्रमबद्ध पर्याय की बात निकलती है कि जब जो होना है सो होगा, ऐसा बहुत बढ़िया, तो हम आपसे कुछ नहीं करेंगे। क्यों? कि सर्वज्ञ ने देखा है ना, सर्वज्ञ को हमने माना। और हम कई लोग तो ऐसा कहेंगे, ऐसा कैसा होगा, हम तो कुछ करके ही दिखाएंगे। सर्वज्ञ ने देखा तो क्या होगा, क्रमबद्ध पर्याय में, लेकिन हमारा पुरुषार्थ कहां रहा? तो जो अपने ही पुरुषार्थ को बहुत बड़ा मान रहा है, ख्याल में है ना, तो उसने सर्वज्ञ को माना ही नहीं पहले। ऐसे कौन थे बड़े बड़े महाभाग थे, नहीं याद है आपको किसी को? नेमिनाथ भगवान के समोशरण में जब बात आई, हाँ, अरे द्वीपायन मुनि क्यों, श्री कृष्ण भी और उसका बलराम कौन था भाई, बलभद्र जो भी है, बलराम, इन्होंने भी कहा माना था, क्योंकि वहां तो ऐसा दिव्य ध्वनि में आया था कि इसमें कोई नहीं बचेगा। और जो अर्धचक्रवर्ती ऐसा जो श्री कृष्ण, जिसके हाथ के नीचे इतने नौकर चाकर क्या नहीं थे, उसको आखिर स्वयं को घोड़े जैसा या बैल जैसा रथ खींचना पड़ा, तो खींचा उसने मोह के कारण, माता पिता को बचाओ, वो नहीं बचे। तो क्या उनका सर्वज्ञ ऊपर भरोसा था कि नहीं? नहीं हाँ जी हा, हिंदूबेन अगर वो नहीं होता तो क्यों प्रयत्न करते? लेकिन उनको ऐसा अहंकार था कि मैं करके बताऊंगा, इसको भी हम जुटला सकूंगा। और जिनको साचा भरोसा था वो तो कह, अरे यह तो विश्व क्षण भंगुर है, कहीं तो अपने आत्मा में उतर के सम्यक दृष्टि हो गए, कहीं तो मुनि हो गए, कहीं तो केवल ज्ञानी भी हो गए उसी समो शरण में। तो यहां कहते हैं कि केवल दर्शन और केवल ज्ञान रूपी पर्याय की अस्थि स्वीकृत करना यह भी कोई असाधारण बात है। देखो फिर से पढ़ना, आहा, केवल ज्ञान केवल दर्शन पर्याय नी अस्थि नी प्रतीति, प्रतीति यानी क्या, श्रद्धा विश्वास थवी, अर्थात केवल ज्ञान केवल दर्शन अनंत आनंद अनंत वीर आदि पूर्ण पर्याय नु अस्थिपनु छे, आवी महान अलौकिक सत्ता जगत मा छे। एम प्रतीतिमा आवू ये असाधारण बात छे। यानी यहां सर्वज्ञ की स्वीकृति हुई, क्योंकि पर्याय पर से तो हम द्रव्य को पकड़ते हैं। अभी हम यहां बैठे हैं और यहां सूरज का किरण आए, अरे रात को सूरज का किरण देखो तो सूर्य दिखता, तो हमने क्या देखा, सूरज को नहीं देखा था, पर्याय को देखा था, पर मतलब किरण को देखा था। तो हम देखो भाई आप कौन हो साहब, क्योंकि तो मैं तो साहब मिथ्या दृष्टि हूं, तो मिथ्या दर्शन जो है, मिथ्या दृष्टि जो है, वो तो पर्याय है ना, उसमें से तो पूरे द्रव्य को उन्होंने लिया। और आप कैसे हो, मैं बहुत क्रोधी हूं। तो क्रोधी जो पना है वो चारित्र गुण के विभाव पर्याय है ना, तो एक पर्याय में से पूरे द्रव्य को उन्होंने क्रोधी बना दिया। तो वैसे यहां केवल दर्शन केवल ज्ञान ऐसी जो बात है वो पर्याय पर से वह द्रव्य की अस्थि है यह भी सिद्ध होता है। देखो क्या लिखा, ये कहते हैं सेकंड लाइन से लेता हूं, आवी महान अलौकिक सत्ता कई पर्यायोनी सत्ता जगत मां छे एम प्रतीति मां एटले विश्वास मां श्रद्धान मां लेवू आवू ए असाधारण वात छे। आहा हा आई कहे छे हे प्रभु आवो तू होता एटले तारू आवू अस्तित्व छे छता हूँ आवी हयाती नो अंतर मां स्वीकार थयो छे तो पछी हूँ बीजाने बीजाने एटले कि जो बिल्कुल मतलब काम क्रोध आदि से युक्त है ऐसे लोगों के संसारियों ने केम बंधु, उन्होंने पहले नाम दिए थे ना हमने पढ़े थे, तो यहां मुनियों की बात नहीं लेना। आगे कहते हैं सुगतम अगधरम वा एम पद छे ने, मतलब के श्री जिन ने अगधर नाम थी कहो तो कहो तेने हूं वंदु छू। अगधर एटले अग एटले अ प्लस ग, जेने गति गमन नथी एवो महान पर्वत, पर्वत ने अगधर कहे छे। जेने गति अने गमन नथी एवो महान पर्वत अने धर एटले धरी राखनार, मतलब भगवान ने अगधर अर्थात गिरिधर भले कहो, क्योंकि ये भगवान के अलग अलग नाम जो है ना, वो तो नाम से वो पर्टिकुलर कोई भगवान पहचाने जाते हैं। तो वो कहते वो बात मत लेना, यहां क्या कह रहे हैं आप उसको अगधर कहो या सुगत कहो कुछ भी कहो, पर आवा फोर्थ लाइन आवा श्री जिन भगवान ने हो एम तो श्री कृष्ण ने गिरिधर कहवामां आवे छे, पन ए वात अहीं नथी, अहीं तो श्री जिन भगवान अनंत वीर्यवान होवाथी तेमने गिरिधर कया छे। आ हा अनंत बल शक्ति रूपे जे हतुं तेने भगवाने प्रकट कर्युं छे, अने ते वडे निज अनंत स्वरूपनी रचना धारण करी छे, तेथी भगवान ने गिरिधर कहेवामां आवे छे। क्या बता रहे, देखो डॉक्टर साहब ख्याल में है राइट, यहां भगवान के क्या प्रकट हुआ है अनंत वीर्य, तो वीर्य गुण का कार्य क्या है कि स्वरूप की पर्याय में रचना करना। अभी इनका तो कैसा वीर्य, अनंत वीर्य प्रकट हुआ है। अब वो क्या कह रहे देखो, अनंत बड़ इतने अनंत वीर्य शक्ति रूपे जे हतुं, यानी सबके तो शक्ति रूपी अभी हमें भी है, तेने भगवान ने प्रकट करी हूं छे, पर्याय में वो शक्ति अभी उनकी प्रकट हुई अनंत बल, अने ते वडे शू करियों तो निज अनंत स्वरूप नी रचना धारण करी छे, पोतानो स्वरूप केवु छे अनंत अनंत स्वरूप जेवु छे, तेवु पर्याय मां धारण करवा माटे अनंत वीर नी आवश्यकता, एनी प्रकट पर्याय थाय तो ये धारण करी सके एम छे। एटले पूर्णपणे आम तो सम्यक दृष्टि हो ये पण धारण करे छे, पण ए तेटला प्रमाण केम के हजु एने अनंत वीर्य प्रकट थयुं नथी, तो कहे छे કે તે વડે નિજ અનંત સ્વરૂપની રચના ધારણ કરી છે, તેથી ભગવાનને ગિરિધર કહેવામાં આવે છે. શું કીધું? આહા, પ્રગટ અનંત વીર વડે નિજ અનંત સ્વરૂપની રચના વા અનંતા ગુણપર્યાયોને ભગવાને ધારી રાખ્યા છે, માટે તેમને ગિરિધર અગધર કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ? એક દફે ઉને એસા બતાયા, સમજાણું કાંઈ? તો ઉનકે બહુત ફોલોઅર થે. હા ગુરુદેવ, ક્યાં એસા કુછ બોલે તો સમજી જાઓ તો નિયાલ થઈ જશે. ત્યારે વાસ્તવ મેં એ બાત આપની પકડ મેં આ જાય તો તેરા ભેડા પાર હો જાયગા. એસા કહે છે ભાઈ, પોતાના જ્ઞાનમાં નિસંદેહ અનુમાપ આવવું જોઈએ કે આવા ભગવાન છે, આવા ભાવના ધરનારા પરમાત્મા છે. અભી દેખો ઇસમે ઇતની ગહેરાઈ બતા દી હૈ. ક્યાં કહેતે હૈ? સમ્યક દ્રષ્ટિ જો હોતા હૈ ના, ઉસકે કોન સે અંગ હોતે હૈ યાદ હૈ? સમ્યક દ્રષ્ટિ કે આઠ અંગ કોન સે હૈ? એક હાથ, એક પેર, એસે અષ્ટંગ હોંગે કે નહીં? કોન સે હોંગે? હા હા, બોલો બોલો બોલો. એક મિનિટ ફિર સે બોલો, બરાબર હૈ બોલો. હા બસ બસ બસ, નિશંકિત અંગ હોગા. કિસકો? તો આપને કો હૈ કે નહીં? અપના અપના સમજ લેના, બોલના મત. હા, ક્યોંકિ ફિર એસા ડિક્લેર હો જાય કે હા મેં મિથ્યા દ્રષ્ટિ હું, મેં સમ્યક દ્રષ્ટિ. કાંઈ આપણે કોઈ જરૂર નહીં. અમે ક્યાં દેખના? દેખો દેખો દેખો, કે પોતાના જ્ઞાનમાં નિસંદેહ અનુમાપ આવવું જોઈએ. કોનું માપ? તો કે આવા જિનેન્દ્ર ભગવાન છે અને તેમનું પ્રકટપણું અહીંયા પર્યાયમાં વ્યક્ત થયું છે. આવું નિસંદેહપણે અનુમાપ આવવું જોઈએ કે આવા ભગવાન છે. તો જિસકા યહ સહી રૂપ સે જિસકે નિસંદેહપના હોતા હૈ વહી સમ્યક દ્રષ્ટિ હોતા હૈ. ક્યો? જો અનંત કો દ્રવ્ય બને ગુણ પરે ઓર પર્યાય બને જાણતા હૈ. ઇસમે આને વાલી બાત હૈ? એ નહીં, પહેલે પહેલે રોજ અનુસાર 80 નંબર કી ગાથા. તો ઉસકે ક્યા હોતા હૈ? દર્શન મોહ નષ્ટ હોતા, યાની ક્યા હોતા હૈ? સમ્યક દર્શન હોતા. તો એ નિસંદેહ જો ભગવાન કો દેખો, હમને કહા ના, हमने क्यों शास्त्र में ही लिखा है कि जो सच्चे देव गुरु शास्त्र को सही रूप से जानकर मानता है उसी को सम्यक दर्शन होता है. यहां आई ना बात, देखो क्या देखो देखो, कि पोता ना ज्ञान मां निस्संदेह, किसी भी प्रकार का कोई वहां अभी कुछ किलमिश बाकी नहीं है कि नहीं थोड़ा सा कहीं गड़बड़ नहीं. निस्संदेह अनुमाप कोनुमाप, કે આ અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત આનંદ અને અનંત વીરથી યુક્ત એવા જિનેન્દ્ર ભગવાન હોય છે. આનું માપ આવવું જોઈએ કે આવા ભગવાન છે, આવા ભાવના ધરનારા પરમાત્મા છે. ગુરુદેવ કી તો ક્યાં કહે, એક એક વાક્ય લીખ ડાલતે હૈ, ઉસમે સારા માલ ભરા હોય રહેતે. ખાલી અપને કો દેખને કો ચશ્મા ચાહીએ. યા મિલતા હૈ મુફ્ત મેં ભૈયા, કોઈ બિઝનેસ નહીં મેરા. ક્યાં કહા દેખો? ત્વઈ ગતિ પરમાત્મા એમ કહ્યું છે ને, મતલબ કે હે પરમાત્મા, ત્વઈ સતી, મેને મતી કહા ના, ગતિ કહા. અરે ચશ્મા પહેરના ચાહીએ. અભી આપકો દેતે દેતે મેરી ગડબડી હો ગઈ. ચાલો બહુત બઢિયા. વહી સતી પરમાત્મા એમ કહ્યું છે ને, મતલબ કે હે પરમાત્મા, આપ આવા વિદ્યમાન છો તો હવે અમે બીજા કોને વંદીએ? અમે તો તમારા જ સેવક છીએ. આવો અનંત ચતુષ્ટયમય સ્વભાવ જેને પ્રાપ્ત કર્યો છે તેના અમે સેવનારા છીએ, અમે બીજાને કેમ સેવીએ? ये तो गुजराती आप समझ जाएंगे. सेवनारा छे ने हम आपको ही भजने वाले हैं, आपकी स्तुति करने वाले, आपको ही वंदन नमस्कार सब प्रणमन सब हम आपको ही करेंगे. हम अन्य को क्यों करेंगे, क्योंकि आपने ऐसा अद्भुत अवस्था प्राप्त की है, जो अंदर में था वो प्रकट किया है। तो ऐसे अनंत चतुष्टय से युक्त ऐसे आप जो परमात्मा हो, तो हम अन्य का क्यों सेवन करेंगे, इस तरह से कहेंगे। अवे कहे छे श्री जिनने भले वागीश्वर कहो, छेने अंदर वागधीशम, वागधीश एटले वागीश्वर, आ वागेश्वर, वाग ऊपर बेसनारा एम नहीं हो। देखो गुरुदेव भी बीच बीच में सिक्सर ठूकते थे। ये आजकल हम देखते हैं ना, हाथ में बाला लिए बैठे हुई ये वो, ये वाग में बैठे वागीश्वर नहीं, क्या कहते हैं। तो हम तो कम से कम टीवी देखते, गुरुदेव कहाँ देखने जाते, क्योंकि उनको सब दुनिया की मालूमत थी कि लोग कहाँ कहाँ गोता खाएंगे। क्या कहते हैं, आ वागेश्वर वाघ ऊपर बेचना रेम नहीं हो, पर वागीश्वर अर्थात वाक प्लस ईश्वर एटले वचन ना ईश्वर, हे भगवान आप वचन ना ईश्वर छो, एम वाचे सर्वांग प्रकृति ओम ध्वनि दिव्य ध्वनि प्रभु आपने जो होई छे। तो देखो यहाँ एक बात और उन्होंने बताई है खास विशेष रूप से, कि जो ओंकार ध्वनि जो भगवान के खिलती है वो केवल मुंह से ऐसा कुछ नहीं होता, वो तो सर्वांग में से वह ध्वनि निकलती है और वो निरक्षरी होती है, अक्रम रूप से होती है। यानी हम बोलेंगे कुछ भी दीनेश, तो ये क्रम से आया। ओम शब्द जो है वो निरक्षरी, मतलब उसमें क्रम नहीं है, एक अक्षर निरक्षर, जो नीचे अर्थ दीदो छे ब्रह्मा ने अथवा बृहस्पति ने वागीश्वर अर्थात वाणी ना अधिपति कहेवामां आवे छे। श्री जिन भगवान दिव्य वाणी ना प्रकाशक हुआ थी तेमने अहीं वागीश्वर कहया छे। हा हा हे जिन भगवान आप परम वितराग सर्वज्ञ अनंत चतुष्टय धारी छो, उपरांत आप दिव्य ध्वनि ना धरनारा छो, दिव्य ध्वनि ना प्रकाशक छो, एम कहे छे। आई भगवान नी परम हितकारी वाणी ने याद करीने कहे छे के आवी दिव्य वाणी प्रभु आपने ज होई छे, माटे आप वागीश्वर छो। स्तवन मां आवे छे ने के नमो देवी वागेश्वरी जैन वाणी, वागेश्वरी एटले वाक प्लस ईश्वरी अर्थात वाणी मां ईश्वर एवी दिव्य ध्वनि ना प्रभु आप प्रकाशक छो, माटे आप ज वाणी ना स्वामी छो। अहो पूर्णानंद प्रभु नी वाणी मां पूर्णता ज आवे छे। अहो जे भव्य जीवो एने सांभळे एमनु कल्याण थई जाय एवी अलौकिक दिव्य ध्वनि होय छे। आ वीतराग सर्वज्ञ परमेश्वर तीर्थंकर देव आ रीते वागीश्वर छे, तेमने ज आ बधा नाम लागू पड़े छे, पण बीजा कोईने लागू पड़ता नथी। हवे कहे छे श्री जिनने भले शिव कहो, शिवनो अर्थ छे कल्याण स्वरूप। भगवान श्री जिन शिव अर्थात कल्याण स्वरूप छे, शिवनो बीजो अर्थ मोक्ष पण होय छे, मोक्ष स्वरूप एटले कल्याण स्वरूप। जो नीचे अर्थ कर्यो छे ने महेश ने एटले शंकर ने शिव कहेवामां आवे छे, श्री जिन भगवान कल्याण स्वरूप होवाथी तेमने अहीं शिव कया कहेवामां आव्या छे। आहा पूर्णानंद ने प्राप्त हे जिन भगवान आप परम कल्याण स्वरूप छो, नमोत्थुणम मां आवे छे शिवमय, शिवमयल रुयम अनंतम अनंतम मतलब के हे परमात्मा। हाँ जी अच्छा जो भी है आप समझदार हो समझ लेना क्योंकि ये हमने कभी पढ़ा नहीं ये आप में होगा शायद ठीक है मतलब कि हे परमात्मा आप शिव अर्थात कल्याण स्वरूप छो आहा पूर्ण ज्ञान ने पूर्ण आनंद आपने प्रकट थया छे अने राग नो कण पण आपने नथी एवू परम वितरासा मैं परमात्मा पद आपे प्रकट करियो छे तेथी हे भगवान आप ज शिव शंकर छो आ प्रमाणे परम वितरास सर्वज्ञ कल्याण स्वरूप परम हितकारी एवा श्री जिन परमेश्वर ने हूँ वंदु छु पन बीजा ने केम वंदु एम कहे छे। आ पहला श्लोक नो अर्थ थयो जेमा देवनु स्वरूप प्रकट करीने मांगलिक करियो हवे बीजो श्लोक जिनवानी शास्त्र नो कहे छे। अभी हम वो भूल गए हैं तो पढ़ लेते एक बार दोबारा थोड़ा सा पीछे देखेंगे तो हमें मिल जाएगा। देखो पेज नंबर है 4-4 यानी जहां नियमकार शुरू होता है वहां उसके बाद वाला पेज 5 होगा शायद 5 हाँ वही ये 5 है यहां बोलो
वाचम वाचम यमीन्द्राणां वक्रवार्यमानां वन्दे नयद्वयाय
अभी यहाँ फिर से दोबारा हम पेज नंबर 10 पर आए श्लोक नंबर 2 श्लोकार्थ उत्तर नु प्रवचन शू कहे छे वाचम यमिंद्राणाम वाचम यमिंद्रोनु एटले वाचम यमिंद्र एटले वानीना यमियो मा इंद्र एटले वानीना मौन मा इंद्र वाचम यमी एटले वानीना मौन धरनारा एवा जे मुनिवरो ते अने देवो मा इंद्र एटले के जिन देवो समझाणो काय क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं। जो मुनिराज होते हैं वो मौन रखते हैं और जो तीर्थंकर होते हैं वे जब उनके मन में ऐसी भावना हो जाती है कि अभी मैं मुनि पद लूं तब वो ओम नमः सिद्धेभ्यः ऐसा बोलकर स्वयं ही दीक्षित हो जाते हैं और उसके बाद जब तक वो मोक्ष नहीं जाते तीर्थंकर मुंह से कुछ बोलते ही नहीं
अनंत का
हाँ मोक्ष गए ना भाई उसके बाद तो बोलने का सवाल ही नहीं ना। तो आप कहेंगे क्या बात करते तीर्थंकर की तो वाणी खिलती है अभी हमने देखा था ना किस में खिलती है मुंह से सर्वांग में से उनकी नहीं खिलती हो तो हमारी तो खिलती के नहीं मुंह से तो आप मुंह से बोलते हो कि नहीं बेन लता बेन को पूछेंगे तो व्यवहार भी एम के वहां तो निश्चय थी शू था ये तो बोलो हाँ बहुत बढ़िया सुंदर। अरे यहां पर भी हम तुम कोई नहीं बोल रहा है हम तो बोलने के भाव करते हैं ख्याल में और वहां जो भाषा वर्गणा जो है वह भाषा वर्गणा शब्द रूप परिणत होती है लेकिन ऐसा जरूर कहेंगे कि हमने मौन रखा है तो वो मौन रखने वाले जो मुनिराज होते वो ये भी जानते हैं कि ये भाषा वर्गना का कार्य है, लेकिन मेरे में बोलने की इच्छा ही नहीं पैदा होती। देखो समझने समझना बराबर, मैं तो आ देखो मैं बोल नहीं बताऊंगा, मेरा मौन तो देखो। हम जब पुणे में गए थे ना, पुणे में जब ऐसी बात हुई, मैंने बताया ना आपको पहले कि हम सब तो मिल रहे तो कैसे हो साहब, ठीक तो हो ना हो। फिर थोड़ा दिन के बाद ऐसा हो, नहीं मैं आज बोलने वाला नहीं हूं, मेरा मौन है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि मेरा मौन है ये भी एक्शन से बता रहे, तो इसको मौन नहीं बोलते। ये तो बहुत ऐसी बात है, तो वहां उसकी मान्यता क्या है कि मैं बोल नहीं सकता हूं, बोलना नहीं चाहिए क्योंकि मेरा आज मौन है, तो बोलना नहीं चाहिए यानी मैं बोल सकता हूं, ये मान्यता उसकी पक्की है, वो तो सही मान्यता है ना, तो उसको क्या कहेंगे हम, मिथ्या दृष्टि। क्या मैं भाई कहां गया हमारे वसन जी में, आप बोलते ना कुछ आप बताते नहीं, ये देखो ये बताया अभी क्या बताया, जो असल में जो बात है कि यह जीव बोल ही नहीं सकता है, क्योंकि बोलना जो आवाज जो है वह तो भाषा वर्गना का कार्य है, और ये भाषा वर्गना पूरे लोकालोक में भरी हुई है, लोकालोक नहीं लोक में भरी हुई है, लोकालोक में पूरे लोकाकाश में भरी हुई है, और इसलिए उसका जब जिस रूप से प्रलंबन होगा उस रूप होगा। बात नहीं बैठी आपको है ना, मैं बताऊंगा आपको नहीं बैठी, मैं समझ गया आपके चेहरे पर से, मैं ऐसा पूछता हूं अभी समझो क्या हो गया कि यहां से कुछ कारणवश आपको लेट जाना पड़ा, और आपके घर के बाजू में जैसा बिल्डिंग में घुसते हो इतने में सारा लाइट चला जाए, और सामने से कोई चाकू छुरी लेके आपके सामने निकाल कितना पैसा दे, तो आप बहुत जोर से चिल्लाना चाहते हो, कभी कभी आवाज भी नहीं निकले ऐसा हो सकेगा कि नहीं, क्या तो चिल्लाना चाहते हैं फिर भी आवाज नहीं निकालते, तुमको भी पकड़ा हमारी जया बहन को भी पकड़ा, आवाज नहीं निकलते क्यों भाई, चाहते हो ना तुम बोल सकते हो ना, और जया बहन ऐसा भी बोलती है कि कभी सोते हैं तभी भी बोलते हैं, जब चाहते हैं तब भी बोलते हैं, आप नहीं उनके पहचान की तो नहीं चाहते हुए भी बोलते हैं और चाहते हुए भी नहीं बोलते, तो इसका मतलब हमारी चाह के अनुसार बोलना धरना कुछ नहीं होता। ये आवाज जो आई ना वो भी भाषा वर्गना का कार्य है, वही कुर्सी हिलाते वक्त आराम से हिलाना ऐसा हम बोलते सिखाते तो है ना, पर पहले अंतरंग में ये बात हमारे दिमाग में बैठनी चाहिए कि ये जो है ये कोई जीव नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, अपना नंबर एक पॉइंट एक द्रव्य दूसरे द्रव्य करता, हर बात में अपने को काम में आने वाली बात है। देखो हमको तो हमारी भाषा नहीं सुधारनी है, अपने को अपनी समझ जो श्रद्धा है उसमें बराबर लेना है कि भाई सही बात क्या है, तो हम तो ऐसे ही मानते कि हम देखो कितना हाथ से बोल सकते हैं, कितना जोर से बोल सकते हैं, देखो हमारे हाथ में है ना सारा, कुछ नहीं कुछ नहीं, अभी भी समझे क्या नहीं, नहीं तो और दूसरा रामबाण दू आपके हाथ में। चलो तो यहां बात क्या हो रही है, जिनेन्द्र भगवान मतलब जो तीर्थंकर है वे जब मुनि दीक्षा धारण करते हैं, जब ओम नमः सिद्धेभ्यः बोलते हैं, उसके बाद कभी भी मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालते, तो यहां क्या बात हो रही है कि ये हुआ ना बात,
ये वाणी में
हेलो जिनदेव वाणी ना
मौन
आ गया, आप वागीश्वर वाणी ना प्रकाशक छो, अने वड़ी आई कहे छे कि जिनदेव वाणी ना संयमी होना प्रधान छे, आ के हूं ये जो कहा ना तो ये इसलिए कि वो संयमी अन्य लोग मौन धारण करते हैं और ये मौन मौन ही रहते हैं, इसलिए उनको बागिश होता है। समाधान नहीं, ये उन्होंने प्रश्न पूछा है कि एक बाजु एम कहू कि भगवान आप वागीश्वर वाणीना प्रकाशक छो, अने वही अँ कहे कि जिनदेव वाणीना संयम प्रधान छे, आ केवू भाई आत्मा तो वाणी रहित मौन ज छे। देखो अभी बात आ गई, वाणी तो वाणीना कारणे निकले छे, वाणी क्या आत्मानी छे, भगवान ने वाणीश्वर कया वागीश्वर कया, ए तो निमित्त परक कथननी पद्धति छे। એટલે એ તો વ્યવહાર કથન છે, કેમ કે સાચી વાત છે, નિમિત્ત પરક છે બરાબર, વાણી કઈ ભગવાનની એટલે ભગવાનના આત્માની ચીજ નથી, ભગવાન તો વાણી રહિત મૌન જ છે, તેવી રીતે કાર્યતંત્ર કરો, આ આત્મા પણ વાણી રહિત મૌન જ છે, આત્મામાં વાણી કે વિકલ્પ ક્યાં છે, જીની વાત પ્રભુ ક્યા કહા તમે, યા ઓર એક વાત એડ કર દી, કોનથી કે આત્મામાં વાણી નથી અને વાણી બોલવાનો વિકલ્પ એનો, એ આત્માનો સ્વભાવ નથી, વિકલ્પ કરના વિકલ્પ યાને જો અંતંગ મેં જો ઈચ્છા પેદા હોના વહ ભી જીવ કે સ્વભાવ મેં નહીં હૈ, વહ ચારિત્ર ગુણ કી વિવાહ પર્યાય હૈ। देखो इच्छा कब पैदा होती है कि इसको कुछ न कुछ चाहत होती है, कुछ न कुछ इच्छा आकांक्षा रहते हैं, तो ये इच्छा जो है वो पैदा होना यह तो दुख की निशानी है। हम ऐसा बैठे बैठे थोड़ी देर से ऐसा पैर लेके बैठते हैं, ऐसा करते हैं, क्यों, क्यों इच्छा उत्पन्न नहीं, क्योंकि ऐसा बैठ बैठ के पैर तो तकलीफ हो गई, तो ऐसा पैर किया, ऐसा करके तो ऐसा कर दिया, तो इच्छा है। और हमारे भगवान कैसे निरिच्छ है, उनकी कोई इच्छा ही नहीं है, फिर उनके तो निविधानी खिलती है ना भाई, वो तो उनकी इच्छा के अनुसार नहीं खिलती है ना, उन्हें कोई वाणी खिलाने का विकल्प है, क्योंकि वे तो वितराग है, तो खिलती तो है, हाँ बिल्कुल खिलती है, अरे उनके तो पुण्य का ऐसा उदय है कि उसके कारण ये ऐसा वाणी खिलना और उनकी वहां उपस्थिति रहना, इनका निमित्त नैमित्तिक संबंध है, हमारे तुम्हारे कोई वाणी नहीं खिलती है घर में, और उनके दिन में कितना 3.5 घंटे, 3 बार ना,
2 बार,
हाँ 3 बार, हाँ, और चक्रवर्ती आवे तो मध्यरात्रि में भी, तो ऐसा उनकी वाणी खिलती है, तो इच्छा के अनुसार थोड़ी खिलती होगी, और इनकी इच्छा हुई और वहां वाणी को समझ में आता होगा कि भाई अभी इनकी इच्छा हुई चलो चले जाएंगे, तो इसलिए क्या कहा, देखो आत्मा मां वाणी के विकल्प क्या छे, झीणी बात प्रभु, तो झीणी बात क्यों कही कि विकल्प उठना यह भी जीव का स्वभाव भाव नहीं है, और यह बात समझना झीणी बात है। जब गुरुदेव झीणी बात बोलते हैं ना तो उसमें बहुत गंभीर अर्थ रहता है, क्योंकि हम तो सूक्ष्म माइन्यूट, हाँ जी
फाइन,
हाँ यानी हम कहते हैं ना ये थोड़ी सी सूक्ष्म बात है, ध्यान में आने में थोड़ी तकलीफ होगी तो सूक्ष्म बात, वो आपके बगल में गुजराती बैठे हैं ना उनसे पूछना, हाँ चलो कोई बात नहीं, आप हमसे पूछा बहुत बढ़िया, अब कहाँ गया, हाँ हाँ वाचम यमींद्रो नु अर्थात वाचम यमी ना मौन सेवनारा वाणी ना संयमी મુનિવરોમાં પ્રધાન શ્રેષ્ઠ એવા જિનદેવોનું મુખકમળ જેનું વાહન છે, શું કીધું, એ થોડી પોએટિક લેંગ્વેજ છે, જિનદેવોનું મુખકમળ વાણીનું વાહન છે એટલે એમના મુખકમળથી વાણી ખીરે છે. વાસ્તવિક ખીરતી નથી પણ એમ ઉપમા આપવાની છે ને, શું કહેવાય છે, સિમિલી બતાવવાની, મતલબ કોઈ એસા ઉનકે પ્રતિ બહુ અહોભાવ બતાના હૈ. જૈસા કિસી સ્ત્રી કો દેખ કે હમ કહેતે કે તુમ્હારા તો મુખચંદ્રમા, તો મુખચંદ્રમા ઉસકા મુખ ચંદ્રમા જૈસા હૈ, ગોલ ગોલ હૈ, એ તો કહેને કી બાત હૈ. ક્યાં કહેતે કમલાક્ષણી, યાને કમલ કે જૈસે અક્ષ યાને આંખે હૈ જિસકી, એસા બાત આની કે વો તો ખાલી બોલને કી બાત હૈ. જિન દેવોનું મુખ કમળ, ક્યુકે ઉનકા મુખ એસા ભી ઉનકે મુંહ સે એસા નહીં બોલતે, ઉનકે લીએ તો આદર સે અચ્છે અચ્છે ભાવ નિકલેંગે ને. આહા, ભગવાન ને તો દિવ્ય ધ્વનિ હોય છે અને તે સર્વાંગ પ્રગટે છે, પણ આય મુખકમળ ને વાણીનું વાહન કહ્યું છે. ઘણે ટીકાને મુખને જ લે છે ને, પંચાસ ટીકાએમાં પણ કહ્યું છે કે શ્રમણના મુખમાંથી નીકળેલ અર્થમય અર્થાત મુખરૂપી કમળમાંથી પ્રભુ આપની વાણી નીકળે છે. આય પણ એ જ શૈલી લીધી છે. ભગવાનને તો મૌન જ હોય છે અને આખા શરીરમાંથી ઓમ એવો ધ્વનિ ઉઠે છે, પણ લોકો મુખની મુખ્યતાથી ભાષા કહે છે ને, તેથી એ અપેક્ષાએ અહીં શૈલી લીધી છે. કે આમ જનતા કો સમજાને કે લીએ ઉનકી એસી બાત લીધી હૈ. જિનદેવોનું મુખ કમળ જેનું વાહન છે અને બે નયોના આશરે સર્વસ્વ કહેવાની જેની પદ્ધતિ છે. પ્રશ્ન જુઓ, આમાં બે નયો દ્વારા વાણીમાં કથન આવે છે એમ કહ્યું છે. હા ભાઈ, બે બે નયો દ્વારા સર્વસ્વ કહેવાની પદ્ધતિ છે એની ઓન ના પાડે છે. બે નયો દ્વારા વાણીમાં કથન હોય છે. કથન તો દ્રવ્ય ને પર્યાયનું, એને દ્રવ્યાર્થિક નય અને પર્યાયાર્થિક નય, નિશ્ચય ને વ્યવહારનું એમ બેનું હોય છે ને, હોય ને. જો ન હોય તો એકાંત થઈ જાય અને બે નયનું કથન છે એટલે તો તેમાં એક નય આદરણીય છે અને બીજો નય છોડવા યોગ્ય છે અને ત્યારે જ બે નય સિદ્ધ થાય છે. જો બે નય સરખા જ ઉપાધેય હોય તો બે ભેદ પડે જ કેમ. એને એસા કહેતે હૈ કે દો નય હોતે હૈ લેકિન ઉસમે સે એક ઉપાધેય અને ગ્રહણ કરને યોગ્ય ઓર એક હે યાને છોડને યોગ્ય, છોડને યાને ઉસકો ગૌણ કરના. વો કહેતે હૈ દોનો હી નય ઉપાધેય હોતે તો ફિર દો ક્યું કહેતે, એક હી કહેતે ના, એસા ઉનકા. આહા, દ્રવ્ય ત્રિકાળી ન્યાયક ભગવાન આત્મા ઉપાધેય છે એવી વાણી પણ હે પ્રભુ આપની છે, તથા એક સમયની પર્યાય છે, રાગાદીની હયાતી છે ને તેને હે બતાવે એવી વાણી પણ પ્રભુ આપની જ છે. અહો, દિગંબર સંતો મુનિવરોએ જંગલમાં રહીને કેવી અદભુત અલૌકિક વાતો કરી છે. કહે છે, જિનદેવોનું મુખકમળ વાણીનું વાહન છે અને બે નયોના આશરે સર્વસ્વ કહેવાની પદ્ધતિ છે. ભાષા એમ છે ને, વાચ સર્વસ્વ પદ્ધતિમ, અર્થાત બધે બે નય હોય છે. મોક્ષ માર્ગ તો કહે બે, સમ્યક દર્શન તો કહે બે, સમ્યક જ્ઞાન તો કહે બે, ચારિત્ર તો કહે બે, એમ સર્વ ઠેકાને બે પ્રકારે કથનની વાણીમાં કહેવાની પદ્ધતિ છે. અર્થાત બે નય છે તો પછી ક્રમબદ્ધમાં પણ પર્યાય ક્રમબદ્ધ અને અક્રમબદ્ધ એમ બે પ્રકાર જોઈએ ને. પ્રશ્ન કરતા હૈ, तो प्रश्न में भी वो भूल करके बैठता है, इसलिए तो प्रश्न करता है। तो गुरुदेव के भी वहां कोई पूछते होंगे जब ये व्याख्यान चल रहे थे, तो कहते आप सब में दो दो बात बता रहे हैं, तो क्रमबद्ध में भी ऐसा होना चाहिए कि क्रमबद्ध भी है और अक्रमबद्ध भी है। भाई पर्याय तो क्रमबद्ध ज छे, पण પોતાની અપેક્ષાએ તેને ક્રમ કહેવાય છે, જ્યારે બીજાની અપેક્ષાએ તેને અક્રમ કહેવાય છે, પણ અક્રમ એટલે તેના ક્રમમાં ફેરફાર થાય છે એમ નથી। યાને ક્યા સમજ આવે બેટા? કોઈ વાત દેખો, અભી હમ ક્યા કરતે હૈ કે હમારી ક્યા સમજ હૈ, અંદાજ એસા હૈ કે કોઈ આદમી મર જાય। कौन मरा? तो फला फला मरा। कितने साल का था? 92 साल का। अच्छा, 92 का था ना, ठीक। क्यों? कि उसने जो कुछ करना था अभी मरना तो था, अभी 92 का और कितना जीता। और कोई 22 साल का लड़का मरा।
क्या 22 साल का?
हाँ, दो दिन पहले जो उसको शादी हुई।
क्या कह रहे?
इतना जल्दी नहीं मरना चाहिए। तो उसको क्या लगता है, वो क्रम से कम 60-70-80-90 साल तक जीता, वो ठीक था, तो जल्दी मर गया, वो क्या हो गया, अक्रम रूप मर गया। तो हमारी इच्छा के अनुसार उसका परिणाम नहीं हुआ, वो अक्रम हुआ, और हमारे आइडिया के अनुसार वो 92 में मरा तो क्रम से मरा। अब यहां क्या कह रहे हैं कि जो कुछ होता है वो क्रम से होता है, ये क्रम और अक्रम तेरे बुद्धि की देन है, बुद्धि की वो समझ है। फिर वो क्या कहते, फिर से भाई पर्याय तो क्रमबद्ध ज छे, ज लगाया ना, पण પોતાની અપેક્ષાએ તેને ક્રમ કહેવાય છે, જ્યારે બીજાની અપેક્ષાએ તેને અક્રમ કહેવાય છે, પણ અક્રમ એટલે તેના ક્રમમાં ફેરફાર થાય છે એમ નથી। આમ આ બે નયનું કથન છે, જેમ સ્વદ્રવ્યને પોતાની અપેક્ષાએ દ્રવ્ય કહેવાય છે, અને પરદ્રવ્યની અપેક્ષાએ તેને અદ્રવ્ય કહેવાય છે। બહુ બઢિયા પોઈન્ટ દીયા ઉન્હોને। પોતાની
અપેક્ષા
હાજી હા ક્રમસર જ છે, બીજાની એટલે બીજા લોકો જે અપેક્ષા કરે છે તેની વાત કરી ને અમે, બીજા એટલે જો એવું છે કે દ્રવ્ય ક્યારથી છે, અનાદિથી છે, તો દ્રવ્ય જે છે એ પર્યાય સહિત છે કે પર્યાય રહિત છે? પર્યાય સહિત છે। તો એનું પર્યાયનું પરિણામ સમયે સમયે થાય છે, એ એના મુજબ થશે કે આપણા ઈચ્છાના મુજબ થશે? જો આપણા ઈચ્છાના મુજબ નહીં થાય તો આપણે કહીએ કે આ અક્રમે થયું કયું, તો એ બીજાના અપેક્ષા એ ક્રમ છે, પણ પોતા પર્યાય જે છે એની અપેક્ષા તો ક્રમમાં જ ચાલે છે।
પ્રત્યેક દ્રવ્યનો ક્રમ નિશ્ચિત છે, તે દ્રવ્યની અપેક્ષા બીજા દ્રવ્યનો ક્રમ અક્રમ છે,
એમ પણ લઈ શકો છો,
અનેક પર્યાંક એકસાથ લઈએ તો ક્રમ કહી
શકતા,
અનેક પર્યાંક એકસાથ દેખેંગે તો ક્રમ કરીએ, એક પર્યાય કો દેખકર ક્રમ કૈસે કહી શકતે?
વો નહીં બતા રહે, વો એ પૂછ રહે કે ભાઈ અક્રમ બીજાના અપેક્ષા એટલે બીજાને એટલે કોની અપેક્ષા?
અભી મહાવીર કે પર્યાયન કા ક્રમ કૈસા થા, તો પહેલે મારી જી થા, ફિર વો કભી વો કૃષ્ણ નારાયણ થા, ફિર ઓર કભી નિગોન મેં ચલા ગયા, સિંહ મેં આયા, ફિર સમય દર્શન હુઆ, ફિર 10 ભાવ મેં મોક્ષ ચલા ગયા। અભી હમારા પર્યાયન કા ક્રમ હમ ભી તભી સે થે, અભી હમ મિથ્યા તો મિથ્યા તો મિથ્યા તો મિથ્યા તો અભી તક ચલા, તો એ જો હમારા ઓર ઉનકા પર્યાય કા ક્રમ અલગ અલગ થા, ઉનકી અપેક્ષા હમ અક્રમ હૈ, હમારી અપેક્ષા વે અક્રમ, હમારા ક્રમ હમારે લીએ ક્રમ હૈ,
દૂસરો કા ક્રમ હમારે લીએ અક્રમ
હૈ।
અજી ઝીણી વાત થઈ,
એ સ્પષ્ટ નહીં,
સ્પષ્ટ पूछ रहे थे
तो मैंने तो आपको फुल रूप से उत्तर दिया
क्योंकि आगे बात आई ना स्वद्रव्य की अपेक्षा पर की अपेक्षा में परद्रव्य हूँ ऐसा नहीं स्वद्रव्य नहीं हूँ अद्रव्य कहा अद्रव्य कहा
देखो थर्ड लाइन જેમ સ્વદ્રવ્યને પોતાની અપેક્ષાએ દ્રવ્ય કહેવાય છે અને પરદ્રવ્યની અપેક્ષાએ તેને અદ્રવ્ય કહેવાય છે તેમ પોતાની અપેક્ષાએ પર્યાય ક્રમે છે અને બીજાના પર્યાયની કે જે એના ક્રમે થાય છે એની અપેક્ષાએ અક્રમે છે એટલે કે એનો આ ક્રમ નથી અથવા બીજી રીતે કહીએ તો બધી પર્યાયો ક્રમબદ્ધ છે ને ગુણો અક્રમ છે ગુણો અક્રમ છે એટલે એક સાથે છે જ્યારે પર્યાય ક્રમે એકથી એક છે આમ બે નયોનું કથન છે બે નયોનું કથન છે એ હમ પૂરા કરી લેતે દો પાંચ મિનિટ ટાઈમ હૈ ને સબકે પાસ ભાઈ વિતરાગ પરમેશ્વરની તો બે નયના આશરે સર્વસ્વ કહેવાની પદ્ધતિ છે સ્વથી અસ્થિ ને પરથી નાસ્તિ તો સ્વથી અસ્થિ તે નિશ્ચય છે અને પરથી નાસ્તિ એ વ્યવહાર થઈ ગયો આમ બધે બે નય દ્વારા કહેવાની પદ્ધતિ છે નયદ્વયાયત્ત વાચ સર્વસ્વ પદ્ધતિ એમ છે ને અર્થાત કહેવાની પદ્ધતિ નિરૂપણની શૈલી બે પ્રકારે છે કથનના બે પ્રકાર બે છે દ્રવ્યથી ને પર્યાયથી ભેદથી ને અભેદથી નિશ્ચયથી ને વ્યવહારથી એમ નિરૂપણ બે પ્રકારથી છે આ કહે છે એમ બે પ્રકારથી સર્વસ્વ કહેવાની જેની પદ્ધતિ છે તે વાણીને જિન ભગવંતોની સ્યાદવાદ મુદ્રિત વાણીને હું વંદું છું ત્યાં પહેલા તો ભગવાનને વંદન કર્યું હતું અહીંયા વાણીને પહેલા દેવની ઓળખાણ કરીને વંદન કર્યું અને હવે વાણીની ઓળખાણ કરીને જીનવાણીને વંદન કર્યું છે સમયસારમાં પણ આવે છે કે અનેકાંતમયી મૂર્તિ નિત્યમેવ પ્રકાશધામ ત્યાં પણ વાણીને નમસ્કાર કર્યા છે નિમિત્ત રૂપે ભગવાનની વાણી છે ને આહાહા સ્વભાવમાં જા સ્વભાવમાં જા ને વિભાવથી ખસ ખસ આવી વાણી વિતરાગ પરમેશ્વરની છે આહા આવી જિન ભગવંતોની સ્યાદવાદ મુદ્રિત વાણીને હું વંદન કરું છું એ ક્યાં કહે રહે કે તું દૂસરે કિસી કો નમન કર એસા કહેના તો તેરે કો રાગ ઉત્પન્ન હોગા એટલે કહેતે હૈ કે તું અપને સ્વરૂપ મેં સમા જા સ્વરૂપ મેં જા અબ પર સે ખસ બોલતે પર સે દૂર હટ જા તો ઇસકા મતલબ કે યે આપકો વિતરાગતા કી વૃદ્ધિ બતા રહે યા સરાગતા બતા રહે ઓજનજીભાઈ ખ્યાલ મેં યા બાત સમજને જૈસી હૈ દેખો આપ પર્ટિક્યુલર કિસી કો વંદન કર રહે હો तो उसके प्रति पर को जब देखते हैं तो राग उत्पन्न हुए बिना रहेगा नहीं लेकिन यहां तो ऐसे परती खस अने सोवा वस ऐसी बात है ना तो यही बता रहे कि उससे वीतरागता की वृद्धि होगी और वही हमें करना है और ऐसी जो वीतरागता की वृद्धि करने वाली जो वाणी है वही सच्ची भगवान जिनेन्द्र की वाणी होगी और उसके अनुसार जो कोई शास्त्र लिखे गए हैं जो वितरागता का ही पोषण करेंगे उसी को ही सच्चा शास्त्र कहेंगे तो अभी आगे की बात अभी गुरु नु वंदन करे छे काले वंदन करे छे
સિદ્ધાન નમો આર્યાન નમો વર્ધાયાન નમો લો
नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो वज्रायानम नमो लोये सर्वस्वाम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो वज्रायानम नमो लोये सर्वस्वाम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो वज्रायानम नमो लोये
सर्वस्वाम उसको दर्शन कहा है। फिर बाद में हाँ ये पेंसिल है, ऐसे जो ज्ञान हो गया वो ज्ञान में आ गया। देखो ज्ञान